हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 224। ये जीजू को क्या हो गया दी? वहां से जाते हुए आदित्य की ओर देखते हुए अरुण ने सुनैना से पूछा। अरे उनको होता रहता है, तो छोड़ उनको और मैं तुझे तेरा रूम दिखाती हूँ। वैसे भी बस आज के लिए ही तो रुकना है, कल तक ये चेहरे पर निशान थोड़े ठीक हो जाएंगे तो चले जाना। वैसे ज्यादा दर्द हो तो डॉक्टर को बुलाऊं क्या? ये कहकर वे दोनों घर के अंदर आ गए थे। स्वीटी भी उनके साथ ही थी और उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन अरुण स्वीटी से अच्छा खासा नाराज था। कार में स्वीटी ने जो कुछ भी बोला, भले ही उसका ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी अरुण को बुरा लगा था। नहीं दी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वहाँ पर स्वीटी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अरुण ने कहा। आप बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो भाभी, मैं अरुण को उसका रूम दिखा दूंगी और आप रेस्ट कर लो जाकर, स्वीटी ने सुनैना की ओर देखते हुए कहा। क्योंकि वो पहले ही अरुण के लिए इतनी परेशान थी और पुलिस स्टेशन में काफी भागदौड़ भी की होगी, और उसके बाद रास्ते में या फिर पुलिस स्टेशन में ही विराज को देखकर आदित्य का मूड खराब हो गया था। तब से सुनैना उसे समझा रही थी, लेकिन स्वीटी भी अच्छे से समझती थी कि आदित्य इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है, और अभी सुनैना को उसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने उसकी थोड़ी मदद करने के मकसद से ये कहा। अरे नहीं, तुम भी तो इतनी परेशान हो गई थी मेरे लिए और फिर इतनी दूर तक वापस ड्राइव करके भी आई हो, जाओ तुम भी आराम करो, स्वीटी की बात सुनकर सुनैना ने काफी प्यार से उससे कहा। सुनैना ने इस तरह बोलने पर स्वीटी ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा, आई एम फाइन भाभी, और मेरी फिक्र मत करिए, सिर्फ ड्राइव करने से नहीं थक जाती हूँ, मुझे तो आदत है ज्यादा काम करने की। अच्छा ठीक है, तुम दोनों डिनर कर लेना और तुम अरुण को उसका कमरा दिखा देना, मैं जाकर तुम्हारे भैया को देखती हूँ। इतना बोलकर सुनैना स्वीटी और अरुण को वहीं छोड़कर सीधा ऊपर सीढ़ियों की ओर चली गई, क्योंकि आदित्य तो अब तक रूम में भी पहुंच चुका था। सुनैना के जाते ही स्वीटी ने अरुण की ओर देखते हुए कहा, वो उस साइड, वो राइट साइड वाला रूम तुम्हारा है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में डिनर। स्वीटी बोल ही रही थी कि अरुण ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ठीक है मैं देख लूंगा, बाकी सब तो मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इतना बोलकर अरुण सीधा रूम की ओर बढ़ गया। स्वीटी उसे वहां पर रोकने के लिए कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन तब तक अरुण रूम की ओर बढ़ जाता है और स्वीटी वहां अकेले खड़े होकर सोचती है, आई थिंक कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, मैं भी पागल हूँ, सोच समझकर नहीं बोलती, उसे सच में बुरा लगा होगा, एक तो पहले ही उसने आज इतना कुछ झेला और ऊपर से मैंने भी, बट मैंने वो सब इरादकन नहीं बोला था, वो तो बस ऐसे ही गुस्से में निकल गया था। स्वीटी वहां पर खड़े होकर ये सब अपने मन में सोचती है और फिर उसे ऐसा लगता है कि उसे अरुण से ये बात क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिना किसी बात के उन दोनों के बीच ऐसी गलतफहमी बन जाए। इसीलिए ही वो अपना अहंकार थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर अरुण के पीछे उससे बात करने के लिए जाती है। अरुण के रूम के अंदर जाती हुई स्वीटी ने आवाज लगाकर कहा, अरुण अरुण कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। स्वीटी अरुण के रूम के अंदर आ गई थी, लेकिन अरुण उसे वहाँ पर कहीं नहीं दिखता, लेकिन वॉशरूम से पानी चलने की आवाज स्वीटी को सुनाई देती है, तो वो वहीं बाहर रुक जाती है और अरुण का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद अरुण वॉशरूम से निकलकर आता है, तौलिये से अपना चेहरा पोंछते हुए, उसने शायद अभी अपना चेहरा धोया था और क्योंकि उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था, उसने अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोले हुए थे और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थीं और शर्ट भी अंदर नहीं थी। स्वीटी उसकी ओर देखती है तो कुछ पल के लिए उसका ध्यान उसके चेहरे पर जाता है और वो उसी की ओर ही देखने लगती है और पता नहीं क्यों थोड़ा सा आकर्षित महसूस करती है, लेकिन फिर जैसे ही अरुण उसकी ओर देखता है, वो जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर करते हुए कहती है, अरुण तुम यहाँ, तुमने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। अरुण स्वीटी की इस बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए दूसरी ओर अपना चेहरा करके बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने जूते निकालने लगता है। मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ और तुम हो कि इतना रवैया दिखा रहे हो, सुनाई दे रहा है भी या नहीं? स्वीटी अरुण के इस तरह उसे इग्नोर करने से चिढ़कर कहती है, हाँ वो मेरा मूड नहीं है फिर से ताने सुनने का, और साथ में ये भी कि जेल से होकर आए हो, अरुण थोड़ा सा गुस्से से बोलता है, तो स्वीटी भी उसके सामने आते हुए धीमी आवाज में अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहती है, ओके आई एम सॉरी, मुझे शायद वो नहीं बोलना चाहिए था, बट तुमने भी तो वो लाइसेंस वाली बात, स्वीटी के इस तरह सामने आकर नरमी से धीमी आवाज में ये बात बोलने पर अरुण एकदम से खड़ा होता हुआ उसकी बांह पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था और बाय द वे मैं भी 17 साल का नहीं हूँ। अरुण से इस तरह की किसी हरकत की स्वीटी को उम्मीद नहीं थी तो वो एकदम हैरान होकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अरुण की ओर ही देख रही थी। वहीं उसे इस वक्त अरुण की आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। जैसे ही उन दोनों की नजरें मिलती हैं, अरुण एकदम से स्वीटी का हाथ छोड़कर उससे दूर हो जाता है और कहता है, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, क्यों इस तरह से सॉरी बोलने के लिए यहाँ पर आई हो। इतना बोलते हुए अरुण आगे आकर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है तो उसके पीछे आती हुई कहती है, अच्छा 2 साल ज्यादा बता दिया क्या मैंने, 17 नहीं शायद 15 साल के हो, और सॉरी बोलने नहीं बस गलतफहमी क्लियर करने आई थी, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी गलतफहमी। स्वीटी बोल ही रही थी कि अरुण एकदम से घूमकर उसकी ओर देखते हुए कहता है, कोई गलतफहमी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने रास्ते रहना मैं अपने रास्ते, बट मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे गलत समझो। स्वीटी बहुत ही ज्यादा अर्थपूर्ण निगाहों से अरुण की ओर देखते हुए ये बात कहती है तो अरुण भी उसकी ओर देखते हुए थोड़ी सी सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर दूसरी ओर मुड़कर एक किनारे पर बैठ जाता है और आईने में देखकर अपना चेहरा छूने लगता है। उसके चेहरे पर पड़े हुए निशान अभी भी दर्द कर रहे थे। क्या हुआ, दर्द हो रहा है ना, तुमने मना क्यों कर दिया जब भाभी ने डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा तो। अरुण स्वीटी को इस वक्त पता नहीं क्यों लेकिन इग्नोर करना चाह रहा था, लेकिन स्वीटी फिर से उसके पीछे आते हुए उसके चेहरे के एकदम सामने खड़े होकर उससे सवाल करती है तो अरुण चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता। स्वीटी को इस तरह अपनी फिक्र करते देख कहीं न कहीं अरुण को अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो अपने मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है, मुझे आज तीसरी बार मिल रहा हूँ मैं इससे और ठीक तरह से जानता भी नहीं। दी को भाभी बुलाती है, इसका मतलब जीजू की बहन होगी, लेकिन फिर भी इतना बुरा क्यों लगा मुझे इसके वो बात बोलने पर, और कोई बोलता है तो मुझे इतना तो फर्क नहीं पड़ता, फिर क्यों, और अब तो सॉरी भी बोल रही है, वो भी इतना क्यूट सा चेहरा बनाकर। मैं कॉल करूं क्या डॉक्टर को, ज्यादा दर्द हो रहा है, वैसे बहुत गलत बात है, इस तरह से नहीं मारना चाहिए वो इंस्पेक्टर, बिल्कुल। बोलते हुए स्वीटी खुद से ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर अरुण के चेहरे पर लगे निशान छूते हुए कहती है तो अरुण उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है उन दोनों की नजरें मिलती हैं और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे कि लम्हा वहीं पर थम गया हो।
क्या कर रही हो, रहने दो, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, अरुण स्वीटी को मना करते हुए कहता है और उसके आसपास होने से स्वीटी भी इतनी देर से बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उसके रूम से बाहर निकल आती है और उसके बाहर जाते ही अरुण भी जैसे राहत की सांस लेता है और आराम से पैर ऊपर करके अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और आज सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों के बारे में ही सोचने लगता है। आदि आदि, सुनैना कमरे के बाहर से ही आदित्य को आवाज़ लगाते हुए कमरे के अंदर जाती है, लेकिन आदित्य जो पहले से ही बिस्तर पर बिना कपड़े चेंज किए लेटा था वो सुनैना को देखकर दूसरी ओर करवट घूम जाता है और झूठ मूठ अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। सुनैना आदित्य को करवट घूमते देख लेती है और समझ जाती है कि आदित्य उससे नाराज है, इसलिए वो भी चुपचाप आकर उसके बगल में लेट जाती है और उसकी कमर में अपना हाथ डालते हुए उसके एकदम करीब होकर धीरे से कहती है, कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है ना, सो गए हो ना। हाँ हाँ, लेकिन मुझे तो बात करनी थी तुमसे। क्यों, विराज का नंबर है ना मोबाइल में, अनब्लॉक कर दो और जो बात करनी है कर लो। सुनैना की बात पर आदित्य जो पहले से ही इतना चिढ़ा हुआ था और ज्यादा चिढ़कर कहता है, अरे तुमसे बात करनी है, विराज से नहीं, अब फिर आज कहाँ से आ गया बीच में, और उसे तो मैं पहले ही इतना परेशान कर चुकी हूँ, आज तो अब और दिमाग नहीं खराब करूंगी उस बेचारे का। आदित्य की इस बात पर सुनैना जानबूझकर विराज को बेचारा बोलते हुए उस पर तरस खाकर कहती है तो आदित्य गुस्से से एकदम पलटकर सुनैना की ओर देखता है और उसकी दोनों बाहें कसकर अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है, वो बहुत ज्यादा बेचारा लगता है तुम्हें और उसको परेशान करना भी दिखता है, और ये मैं जो इतना परेशान हूँ तुम्हारे लिए और ऊपर से तुम मुझे कुछ बताती भी नहीं हो, वो सब नजर नहीं आता तुम्हें कि मैं कितना परेशान हूँ कब से। तुम बताते हो मुझे सब कुछ। आदित्य के इतना सब कुछ पूछने पर भी सुनैना उससे सिर्फ एक सवाल करती है, और शायद सुनैना का सिर्फ एक ही ये सवाल ही आदित्य का मुंह बंद करने के लिए काफी था, क्योंकि आदित्य एकदम चुप हो जाता है और सुनैना की बांह पर उसकी मजबूत पकड़ भी ढीली हो जाती है, और उसके पास भी शायद कहने के लिए कुछ नहीं बचता। क्रमशः